आरंभ में मैं अपने बारे में एक निवेदन करके क्षमा आपसे चाहता हूं। मैं गांधी जी के बारे में बहुत बोलता हूं, यह सही बात है, लेकिन संगोष्ठियों में बोलने का मुझे अभ्यास नहीं है। संगोष्ठियों के लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए वह भी मुझमें नहीं है। इसलिए एक अनाड़ी निरक्षर मनुष्य के नाते जो कुछ मैं समझा हूं आप लोगों की सेवा में निवेदन करूंगा। विषय है गांधी जी और उनका जीवन दर्शन। दर्शन शब्द आया है और जीवन भी शब्द आया है। प्रायः ऐसा होता है कि जो दार्शनिक होते हैं उनका जीवन से संबंध नहीं होता और जो जीते हैं उनका दर्शन के साथ संबंध नहीं होता। दर्शन शब्द का प्रयोग अक्सर तत्व ज्ञान फिलॉसफी के अर्थ में किया जाता है और एक ने ऐसा वर्णन किया है कि फिलॉसफी इज ए लेबरिंथ ऑफ डेड एंड स्ट्रीट्स एंड ब्लाइंड एलीज लीडिंग फ्रॉम नथिंग टू नोवेयर। क्योंकि फिलॉसफी में वस्तु के प्रति, वस्तु को देखकर हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं भावनात्मक और बौद्धिक, उनके संग्रह का नाम तत्व ज्ञान है। दर्शन इससे अलग है, दर्शन का मतलब देखना है, लेकिन हमारे यहां भी परंपरा से कुछ इसका भिन्न अर्थ किया गया। भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि जो ज्ञानी होता है वो ब्राह्मण शूद्र चांडाल गाय हाथी और कुत्ते को समान देखता है। पंडिता समदर्शिना। तो धर्मशास्त्र के एक महान पंडित ने, धर्मशास्त्र के ही नहीं वेदांत के एक महान पंडित ने मुझसे कहा कि तुम अछूतों के साथ बैठते उठते हो, खाते पीते हो, गीता की उपदेश के ये विरुद्ध खिलाफ है। मैं कहा उसमें तो कहा है पंडिता समदर्शिना शुनिचैव श्वपाकेच, कुत्ता और कुत्ता खाने वाला सभी को, ब्राह्मण को समान देखता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई उसमें समदर्शिना है, समवर्तिना नहीं है। दर्शन का वर्तन के साथ कोई संबंध नहीं है, वो देखता है उनको सबको समान रूप से उनके साथ व्यवहार करता है, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो यह है कि गांधी का कोई तत्व ज्ञान नहीं था, उसका अपना कोई दर्शन नहीं था, कोई विचार प्रणाली नहीं थी, वो सत्य की खोज में प्रवृत्त हुआ था। और जो सत्य की खोज करता है वो किसी प्रकार के विचार को पकड़ नहीं सकता, किसी प्रकार के विचार के साथ उसका गठबंधन नहीं हो सकता। सत्य अलग चीज है, विचार अलग चीज है। गांधी सत्यनिष्ठ था, विचारनिष्ठ नहीं था, और इसलिए उसका दर्शन जीवन में से विकसित हुआ। आपने ऐसे ये कभी नहीं देखा होगा कि पहले गांधी ने अपने दर्शन की बात कही और फिर आचरण करने लगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी की मिट्टी पलीत नहीं होती तो हमको महात्मा गांधी ही नहीं मिलता। महात्मा गांधी हम भारतवर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका की देन है, दक्षिण अफ्रीका का वरदान है। हमारे देश में अगर वो रहता तो आत्मविज्ञान में ही कैद रह जाता, उससे आगे नहीं जाता। उसमें से इस समस्या में से, जीवित समस्या में से जो स्फूर्ति मिली सत्य की खोज की तरफ, उसमें से वो दौड़ा। और कोई बात, कोई एक सिस्टमेटिक फिलॉसफी, एक व्यवस्थित तत्व ज्ञान विकसित किया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो ये गांधी के लिए पहली चीज है जो मैं निवेदन करना चाहता हूं। उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। आइडियोलॉजी का मत से मतलब है विचार का संप्रदाय। विचार जब बर्फ की तरह जम जाता है, उसमें से प्रवाह समाप्त हो जाता है, विचार ही कुंठित हो जाता है, तब उस जमे हुए विचार का, ऑर्गेनाइज्ड थॉट का नाम आइडियोलॉजी है। एक दफा शैतान जा रहा था अपने शिष्य के साथ, घूमने निकला। दो शिष्य थे, एक आगे आगे चल रहा था, एक उसके कुछ पीछे, और सबसे पीछे शैतान की, स्वयं शैतान बादशाह चल रहे थे। तो जो आगे शिष्य चल रहा था, उसने कोई चीज रास्ते से उठाकर अपनी जेब में रख ली। अब ये दूसरा शिष्य जो था, वो गुरु से कहने लगा शैतान से कि इसने कोई चमकीली चीज उठा ली है और जेब में रख ली है, आपको दिखाना नहीं चाहता। शैतान ने पूछा, आखिर तुझे, तूने क्या उठाया? सत्य का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो टुकड़ा चमक रहा था, मैंने जेब में रख लिया उठाकर। तो शैतान ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, बिकॉज ही इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो इस सत्य को संगठित करने वाला है, तो मेरा ही होगा। वो सत्य तो हो ही नहीं सकता है, वो मेरी ही चीज होगी। संगठित विचार अविचार है। ये संगठित विचार जब आक्रमणशील बन जाता है तो उसे वाद कहते हैं, और ये संगठित विचार, आक्रमणशील संगठित विचार जब सत्ताकांक्षी बन जाता है तो उसे पार्टी कहते हैं। गांधी सत्यनिष्ठ था, इसलिए इनमें से कोई निष्ठा उसको छू नहीं गई। एक दूसरी चीज, हमारे देश में आत्मज्ञान और आत्मविज्ञान, कोई कहता है 5,000 वर्षों से चल रहा था, कोई कहता है 10,000, और कोई तो कहते हैं कि पता नहीं लाख वर्षों से भी चल रहा हो। लेकिन हमारे सारे इतिहास में यह देश गुलाम ज्यादा रहा और आजाद कम रहा। तो एक बात मेरे दिमाग में हमेशा पैदा होती रही, एक सवाल उठता रहा बचपन में भी, कि क्या आत्मज्ञान का गुलामी के साथ कोई संबंध है? अवश्य रहा होगा। तो एक आदमी निकला, गांधी, जिसने कहा कि जहां आजादी नहीं है वहां आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है। अगर वो है तो जीवन में नहीं है, परोक्ष हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। 1919 में जब गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस, कानून भंग का आंदोलन शुरू किया, तो जॉर्ज अरुंडेल ने एक पत्र लिखा, गांधी तुम तो धार्मिक पुरुष हो, साधु हो, महात्मा हो, तुम इस राजनीति के पचड़े में, इस पंख में, इस कीचड़ में क्यों आते हो? तो जवाब दिया, यू आर राइट, माय बेंट इज रिलीजियस, बट आई टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स बिकॉज पॉलिटिक्स टचेस द वाइटल बीइंग ऑफ इंडिया। भारत की आत्मा का ही स्पर्श ये राजनीति करती है। गांधी के साथ ही थे चार्ली एंड्रूज। चार्ली एंड्रूज ने एक किताब लिखी, एक लेखमाला लिखी, उसके बाद में किताब हुई इंडिपेंडेंस द इमीडिएट नीड, स्वतंत्रता इस देश की तुरंत आवश्यकता है, तात्क्षणिक आवश्यकता है। और उसमें लिखा कि ज्यादा दिन जो देश गुलाम रहता है उसकी सांस्कृतिक और आत्मिक हानि होती है, इसलिए स्वतंत्रता आज ही चाहिए, इसी क्षण चाहिए। इस देश के जिन थोड़े व्यक्तियों ने, सत्यनिष्ठ व्यक्तियों ने इस सत्य को समझा, माना और उस पर आचरण किया, उनके शिरोमणि गांधी हैं। एक मित्र आज आए थे, गांधी जी की मूर्ति बनाने को उनसे कहा गया है, तो उन्होंने कहा मैं गांधी के कुछ सूत्र लिख देना चाहता हूं। एक सूत्र उनमें से उन्होंने कहा यह है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यह नहीं कहा कि मेरा जीवन ही आदर्श है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब यह था कि मेरे दर्शन में और जीवन में अंतर जरूर है, विरोध नहीं है, जीवन और दर्शन में अनुबंध है। जिस क्षण मैंने समझ लिया कि स्वतंत्रता के बिना न धर्म जी सकता है, न अध्यात्म जी सकता है, न नैतिकता जी सकती है, न संस्कृति रह सकती है, उसी क्षण मैं स्वतंत्रता की तरफ मुड़ा और स्वतंत्रता को ही अपना लक्ष्य माना। जब तक स्वतंत्रता नहीं मिली है तब तक कोई भी गुण विकसित नहीं हो सकता है। उसी वक्त शायद एंड्रूज हो या किसी ने लिखा था, स्लेवरी इज द डार्क रूम इन विच ऑल नेगेटिव्स आर डेवलप्ड। सारे दुर्गुणों का विकास गुलामी में होता है, दासता में होता है, इसलिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मित्रों, हमारे इस आध्यात्मिक देश में ये बुलंद आवाज जिसने उठाई वो अद्वितीय वैष्णव गांधी था। वैष्णव जन के गुण अभी गाए गए, लेकिन उसमें, उन गुणों में स्वतंत्रता का कहीं स्थान नहीं। वैष्णव के गुणों में स्वतंत्रता भी आती है और उसका जीवन में आचरण होना चाहिए और वो लोक जीवन में चरितार्थ होनी चाहिए, तभी आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास हो सकता है। थोड़े से व्यक्तियों ने इस देश में इस बात को समझा, उनमें से गांधी को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। इसलिए मानता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरी प्रवृत्ति तो धार्मिक ही थी, परंतु मैं इसकी तरफ मुड़ा। और एक चीज जिसका उल्लेख अभी उपराष्ट्रपति जी ने किया कि मैं स्वतंत्रता तो चाहता हूं लेकिन राम राज्य। हम लोग छोटे थे तो हमेशा ये सोचते थे और मांग भी करते थे, बुद्धिवादी लोग, लोकमान्य तिलक से, गांधी से कि तुम स्वराज्य की परिभाषा करो, व्याख्या करो। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लोकमान्य ने एक दफा कह दिया कि कॉल इट होम रूल, कॉल इट सेल्फ गवर्नमेंट, कॉल इट स्वराज, और कॉल इट ABCD फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट वी वांट इज दैट द एग्जीक्यूटिव शुड बी होल्ली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड द लेजिस्लेचर होल्ली इलेक्टेड। अब गांधी ऐसी भाषा में बोलता नहीं था क्योंकि वो शास्त्री नहीं था, आप जानते हैं ना, शास्त्री नहीं था इसीलिए क्रांतिकारी हुआ। प्रॉफिट और प्रीस्ट में फर्क है। प्रीस्ट पुरोहित किताब से बाहर कभी जा नहीं सकता, जिसकी बुद्धि किताब से बाहर नहीं जाती है उसका नाम शास्त्री है। और प्रॉफिट क्रांतिकारी वो होता है जिसकी बुद्धि हमेशा किताब से बाहर ही चलती है। इसलिए गांधी को कभी किसी ने शास्त्री और विद्वान नहीं माना, लेकिन वो गांव वालों की भाषा में बोलता था रामराज। अब हम रामराज का क्या मतलब करते हैं, जिसमें शूद्र का वध होता है, हत्या होती है, जिसमें सीता का त्याग होता है, जिसमें बाली के साथ दगा होता है, और जिसमें शूर्पणखा के नाक कान काटे जाते हैं, यह हमारा रामराज है। गांधी किस रामराज की कल्पना करता था, इसे दर्शन कहते हैं मित्रों, शुभ दर्शन। जो कुछ पढ़ो देखो उसमें से जितना शुभ है उसको ग्रहण करो। एक शिकायत करता है कि यह सृष्टि भगवान ने बड़ी भद्दी बनाई है, इसमें गुलाब जैसे सुकुमार फूलों में कांटे लगते हैं। दूसरा कहता है कितनी सुंदर सृष्टि है, कांटों में भी गुलाब लगते हैं। देखने का फर्क है। तो गांधी का एक देखने का फर्क था। गांधी ने भी रामराज देखा। कौन सा रामराज? सत्य के लिए राम ने राज छोड़ दिया। युवराज्याभिषेक होने वाला था उसी दिन। लक्ष्मण ने कहा कि राम, तुम अगर राज नहीं करना चाहते तो मैं कौन होता हूं? अवधतहां जह राम निवास, जहां तुम्हारा निवास होगा मेरे लिए वही अयोध्या है, और भरत के लिए तो सारे दांव पैंच लगाकर सारी तैयारी कर रखी थी कैकेयी ने। तो कैकेयी से भरत ने कहा कि मैं नहीं राज करूंगा, राम को मनाने गया और उनकी पादुकाएं लेकर आया। बंकिम चंद्र ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है लोक रहस्य, उसमें मूर्खों की एक सूची दी है। उनमें प्रधान मूर्ख है हरिश्चंद्र, जिसने सपने में दिया हुआ राज वास्तव में दे दिया। ऐसी सूची है। उसमें फिर आते हैं एक राजा दशरथ, जिसने संकट में दे दिए वरदानों के लिए, पुत्र को भी जंगल में भेज दिया। और उसके बाद के मूर्ख हैं राम, जो अपना राज छोड़ गए। और सबसे ज्यादा मूर्ख, सबसे मूर्ख शिरोमणि है भरत, क्योंकि वो तो आया हुआ राज छोड़कर जाता है। तो रामराज का पहला लक्षण यह है कि गद्दी के हकदार सब होते हैं लेकिन उम्मीदवार कोई नहीं होता। हकदार सब, उम्मीदवार कोई नहीं। रामराज जितने हकदार सभी उम्मीदवार, हराम राज। ये दोनों में फर्क है। तो ये जो दूसरा राज है जिसमें सभी उम्मीदवार होते हैं, इसकी आचार्य है मंथरा। राम नहीं है और भरत भी नहीं है। मित्रों, ये कुछ संकेत हैं जो गांधी के अपने जीवन में देखे जाते हैं। स्वराज्य के लिए प्राणपण से लड़ाई की, अहिंसक लड़ाई की, लेकिन स्वराज्य को आते देखा तो नवाखाली चला गया। कलकत्ते में उपवास किया और दिल्ली में आकर भी उपवास किया। तो ये नेता था इसलिए कि प्रतिनिधि नहीं था। प्रतिनिधि अलग होता है, नेता अलग होता है। इसलिए गांधी की राजनीति में कुछ ऐसे अद्वितीय लक्षण थे जो और कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन आदमी था कुछ अनोखा, बेमेल, जो अपने जमाने से किसी तरह से मेल नहीं खाता था, बातें भी अटपटी करता था। तो उनमें से कुछ बातों को आप लोगों कल सुनाऊंगा। आज तो जिस तरह की हमारी सभा है उसमें मैं भी कुछ अपनी बात नबे तुले शब्दों में रखना सीख रहा हूं। मित्रों, एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, उसके सामने एक प्रयोग था, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट। अगर वो प्रयोग करता है, परीक्षण करता है, तो जान जाने का खतरा है। छोड़ देता है तो विज्ञान का कदम आगे नहीं बढ़ता, साइंस का। तो अब असमंजस में पड़ गया, अपने साथी से पूछा, भाई ऐसी समस्या है, क्या करूं? तो साथी ने कहा, इसमें क्या आसान है, सीनियर से पूछो। अब सीनियर में एक खासियत होती है हमेशा, वो युक्तियां बहुत जानता है, हिकमत है बहुत उसको याद रहती है। तो सीनियर के पास गया, कहा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, इस तरह का परीक्षण है, क्या करूं? उसने जवाब दिया, नुस्खा बताया, बहुत सुंदर। इफ यू वॉन्ट ए डिफिकल्ट जॉब डन, गेट द डैम फूल डू इट हु डज नॉट नो दैट इट कैन नॉट बी डन। ऐसे बेवकूफ को पकड़ो कि जिसको यह पता ही नहीं है कि यह मुश्किल काम है। ऑलिवर बॉलिवर था, साइमन बॉलिवर, ये मेक्सिको का लिबरेटर। तो उसने हिस्ट्री, जीसस क्राइस्ट, डॉन क्विक्सोट एंड माइसेल्फ। एक तो जीसस हुआ, दूसरा डॉन क्विक्सोट, शेख चिल्ली हुआ, और तीसरा मैं हुआ। भगवान की कृपा से हमारे देश में भी ऐसा एक फूल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर पैदा हुआ, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नमस्कार। एक बात निवेदन कर दूं कि मैं जो कहता हूं वो मेरा अध्ययन है, मेरे पास कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है। और कोई जिसे आप निश्चित मत कहते हैं वो भी नहीं है। मैं अध्ययन करता हूं, उसमें से मेरी भी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, उन सब के समाधान या उत्तर भी मेरे पास नहीं है। और मैं जो कुछ थोड़े निष्कर्षों पर पहुंचा हूं, उनमें से एक निष्कर्ष यह है कि दुनिया के सारे सिद्धांतों की अपेक्षा प्रामाणिक प्रश्न में अधिक सत्य होता है। इसलिए जितने प्रश्न होंगे उनको अपनाने की, उनको समझने की कोशिश मैं करूंगा और उनका अध्ययन आप लोगों के साथ करूंगा। गांधी के जीवन दर्शन के विषय में एक जो उनकी अन्यतम विशेषता रही है वो यह रही है कि उन्होंने इस देश में परंपरा से चली आई भिन्न भूमिका की दो सत्ताओं को मिला दिया। हमारे देश में दो भिन्न सत्ताएं मानी गई थी, एक पारमार्थिक सत्ता और एक व्यावहारिक सत्ता। कल मैंने थोड़ा सा इसका संकेत किया था कि समदर्शी समवर्ती नहीं होता, यह हमारे यहां माना गया। व्यावहारिक सत्ता का मनुष्य का आचरण अलग और पारमार्थिक सत्ता पर आचरण अलग, ऐसा एक दोहरा जीवन, एक दोहरा मानदंड इस देश में प्रचलित हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के साधारण मनुष्य का ही नहीं तो हमारे देश के साधकों का जीवन भी द्विधा हो गया, सिर्फ दोहरा नहीं दो टूक हो गया, उसके दो टुकड़े हो गए। एक दो हैसियतों की तरह दो जीवन बन गए अलग अलग। एक प्रसंग मुझे याद आता है, बहुत साल हो गए, एक सज्जन महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता थे, वो पुणे के म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी थे और पुणे की कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष थे, नगर कांग्रेस कमेटी के। मुंबई का गवर्नर लॉर्ड विलिंगडन आने वाला था तो म्यूनिसिपैलिटी ने प्रस्ताव किया कि उसे मानपत्र देंगे और कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव किया कि उसका बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। तो ये जो अध्यक्ष महोदय थे, जब ट्रेन आई तब स्टेशन पर गए और काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे भी लगाए और शाम को जब म्यूनिसिपैलिटी का इजलास हुआ तो उसमें अध्यक्ष के नाते मानपत्र भी पढ़ दिया और यह कहा कि मैंने, मेरी दो हैसियतें थीं, दो हैसियतों से मैंने दो काम किए। मनुष्य की हैसियतें अलग अलग हो सकती हैं, हम सकती हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, लेकिन इस तरह की दो हैसियतों में सामंजस्य दिखा देना इस देश का ही नागरिक कर सकता है। हमारे देश में इस तरह से मनुष्य का व्यक्तित्व द्विखंड हो गया, पारमार्थिक शोध ईश्वर भक्ति या आत्मोन्नति की साधना अलग और व्यावहारिक जीवन उससे बिल्कुल अलग। समाजोन्नति का कार्य और आत्मोन्नति का कार्य दोनों की साधना एक नहीं हो सकती। गांधी के जीवन में इन दोनों का समन्वय है, संवाद है और एक तरह से इन दोनों का मधुर मिलन भी है। ये गांधी की जीवन की विशेषता है। इसलिए हमारे देश के बहुत से लोग जिनमें पारमार्थिक उत्कंठा थी मुक्ति की, वो भी गांधी के पास आए, नहीं तो हम लोगों के सामने बड़ी समस्या रहती थी। मैं जब इस खोज में निकला, ऐसा मैं समझता हूँ आप में से हर एक कभी न कभी निकले ही होगा कि यह परमार्थ क्या चीज है, इसको जाने, ईश्वर को समझने की कोशिश करें और जानने की भी कोशिश करें, तो कदम कदम पर मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा होता था, रखा भी जाता था कि अगर धर्म और देश में विरोध पैदा हो तो तुम देश के पक्ष में जाओगे या धर्म की तरफ मुड़ोगे। मनुष्य का कल्याण और आत्मोन्नति, इन दोनों में कोई विरोध किसी तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये गांधी की विशेषता होने के कारण पारमार्थिक वृत्ति वाले और सामाजिक वृत्ति वाले दोनों तरह के लोग उसके साथियों में देखे गए। वो आध्यात्मिक साधक भी माना गया और सामाजिक जीवन में सामाजिक जीवन का परिष्कार परिमार्जन करने वाला भी माना गया। यह उनके जीवन दर्शन की एक अन्यतम विशेषता है जो अन्यत्र नहीं पाई जाती। पहले जो समाज सेवक या राजनीतिज्ञ होते थे या राजनैतिक लोग कह लीजिए, इन लोगों का जीवन दोहरा होता था, सामाजिक जीवन अलग और मंदिर का जीवन अलग। मंदिर के यानी व्यक्तिगत जीवन में जो दोष समझा जाता था, सामाजिक जीवन में उसे पुण्य माना जाता था। लोकमान्य तिलक के जमाने तक यह विरोध रहा। गांधी पहला मनुष्य आया जिसने व्यक्तिगत नीति के नियम मानदंड का सामाजिक मूल्यों में रूपांतर करने की कोशिश की। उनसे पहले गांधी से पहले गोखले ने यह कोशिश की थी। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और उसके उद्देश्यों में यह रखा कि हम पारमार्थिक मूल्यों का विनियोग सामाजिक जीवन में करेंगे, राजनैतिक जीवन में भी करेंगे। इसलिए गांधी ने गुरु माना गोखले को। गांधी गोखले के शिष्य थे, जैसा उन्होंने स्वयं कहा, और लोकमान्य तिलक के उत्तराधिकारी थे। लेकिन इन दोनों की संस्था में वो अमा नहीं सके। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में वो नहीं रह सके और लोकमान्य तिलक के केसरी की लोकमान्य की केसरी संस्था में भी नहीं रह सके। लेकिन लोकमान्य के उत्तराधिकारी और गोखले के शिष्य वो अवश्य थे। इस विशेषता को का मैं आप लोगों को इस विशेषता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्वाइटजर ने लिखा अपने बुद्धिज्म की पुस्तक में कि गांधी के जीवन में एक दोष था, और दोष कौन सा बतलाया कि गांधी ने पारमार्थिक मूल्यों का विनियोग ऐहिक जीवन में किया, व्यावहारिक सामाजिक जीवन में किया। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जिसको उसने दोष कहा वही गांधी की विशेषता थी और वही उनका गुण था। जितने व्यक्तिगत सदाचार के और सामाजिक सदाचार के नियम हैं, उन सब का प्रयोग मनुष्यों के संबंधों में करने की कोशिश की। इसे मैं मनुष्यों के संबंधों का शुद्धिकरण कहता हूं। मनुष्य का मनुष्य से संबंध ही सामाजिकता है, और सामाजिकता तो कोई चीज है नहीं इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। मनुष्य का मनुष्य जो संबंध है वो निरुपाधिक हो, यानी किसी भी प्रकार का स्वार्थ या अवांतर प्रयोजन उसमें न हो। मनुष्यों को एक दूसरे के निकट आना है, इसके सिवा, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य प्रयोजन न हो मनुष्य का और मनुष्य के मिलन में। इसे सामाजिकता कहते हैं और यही व्यवहार का पारमार्थिक मूल्य है। तो व्यवहार में पारमार्थिक मूल्यों का विनियोग करने की कोशिश गांधी ने की। इसका सबसे बड़ा सबूत उनकी समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में है। 1919 में अमृतसर में कांग्रेस हुई, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद अली बंधु पहले पहल उस कांग्रेस में आए, और आते ही उन्होंने अपनी अपनी टोपियां लोकमान्य तिलक के चरणों में रख दी। गांधी उस वक्त नए ही आए थे, कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, लेकिन लोग इतना जानते थे कि बहुत नैष्ठिक पुरुष हैं और दक्षिण अफ्रीका में बड़ा पराक्रम किया है। चित्तरंजन दास ने एक प्रस्ताव रखा कि यह कांग्रेस सरकार ने जलियांवाला बाग में जो अत्याचार किए, अमानवीय अत्याचार, उनका धिक्कार करती है। गांधी खड़े हुए, मेरा एक संशोधन है। प्रस्ताव के समर्थक थे बिपिन चंद्र पाल और सत्यमूर्ति, दास पाल सत्यमूर्ति का प्रस्ताव था। कहा कि अपने अमेंडमेंट संशोधन पेश करो। संशोधन ये पेश किया कि इस प्रस्ताव में मैं ये जोड़ देना चाहता हूं कि ये कांग्रेस उन ज्यादतियों का भी, उन अतिशयताओं का भी निषेध करती है जो लोगों की तरफ से हुई। अब ये कांग्रेस के इतिहास में एक अनोखी चीज थी, ये कोई इसको सह सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी। खापरडे लोकमान्य तिलक से कहने लगे कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये आदमी राजनीति वगैरह कुछ जानता नहीं है, महज भोला आदमी है, बालिश है। दास पाल ने और सत्यमूर्ति तीनों ने कहा कि इस तरह का कोई राजनीतिक सभा में प्रस्ताव कभी हो सकता है? ये प्रस्ताव ही गलत है। लेकिन संशोधन के प्रस्ताव के रूप में रखा। इंग्लैंड में उस वक्त एक पत्र कांग्रेस की तरफ से निकलता था, इंडिया ही उसका नाम था। उसकी संपादिका थी मिस हेलेना नॉर्मिंटन, उसने एक अग्रह लेख लिखा कि ईसा के बाद ईसा से एक कदम आगे जाने वाला आदमी आज पैदा हुआ है भारत में। ईसा ने कहा था, गोल्डन रूल कहा जाता है उसे, सुवर्ण नियम, कि तुम दूसरे से जिस प्रकार का व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार तुम दूसरे के साथ अपनी तरफ से शुरू करो। अब यह आदमी का क्या करता है कि जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा दूसरे से हो उससे कुछ अधिक ही तुम शुरू करो। गोल्डन रूल में था कि जितना चाहते हो उतना करो, ये गोल्डन रूल से सुवर्ण नियम से आगे गया एक कदम कि जितना चाहते हो उससे कुछ अधिक ही करो। अब ये चीज राजनैतिक व्यवहार में तो अनोखी थे ही, सामाजिक व्यवहार में भी इसे न्याय नहीं कहा जाएगा। न्याय में सुवर्ण तुला होती है और वो तौल तौल कर दिया जाता है, सौहार्द न्याय से कुछ अधिक होता है। सौहार्द में न्याय की अपेक्षा नहीं होती। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिखा, एक श्लोक है गीता के चौथे अध्याय में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब लोकमान्य गीता की व्याख्या कर रहे थे, श्री कृष्ण को तो क्या कहना था हम नहीं जानते, ना आप जानते हैं, लेकिन जो लोकमान्य को कहना था वो उन्होंने श्री कृष्ण से कहलाया, और जो गांधी को कहना था वो भी उन्होंने श्री कृष्ण से ही कहलाया, और विनोबा को जो कहना था वो भी श्री कृष्ण से ही कहलाया। इस सब में असल में तो श्री कृष्ण कॉमन टर्म कैंसिल हो जाती है, लेकिन जो व्याख्या की वो किस प्रकार की, लोकमान्य ने अपने गीता रहस्य में व्याख्या की कि इसका मतलब यह है कि जो शट है, दुष्ट है, उसके साथ मैं दुष्ट बनता हूं, और जो शट नहीं है, सुष्ट है, सज्जन है, उसके साथ मैं सज्जनता का व्यवहार करता हूं। गांधी ने अनासक्ति योग में इस पर एक टिप्पणी लिखी, उन्होंने कहा कि न्याय ऐसा है, मैं भी न्यायप्रिय आदमी हूं, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो दूसरे के लिए चाहने लगूं, और जो दूसरे के लिए चाहता हूं वो अपने लिए चाहने लगूं। मेरी जो गलती होती है तो मैं अक्सर माफी चाहता हूं ईश्वर से भी और लोगों से भी कि भाई गलती हो गई है, मैं गलती स्वीकार करता हूं, अपनी भूल क्षमा कर दीजिए। लेकिन दूसरे की अगर भूल हो तो न्याय के नाम पर उसे दंडित करने का आग्रह रखता हूं। तो अपने लिए सजा और दूसरे के लिए दंड, अपने लिए माफी और दूसरे के लिए सजा, यह साधारण संसार में नियम देखा जाता है। मैंने इसको उल्टा दिया है कि अपने लिए न्याय और दूसरे के लिए क्षमा। अब ये एक ही श्लोक का दोनों की व्याख्या है, गांधी की और लोकमान्य तिलक की। इसमें गांधी का दर्शन है, दर्शन से मेरा मतलब है दृष्टि, आउटलुक, दर्शन से मतलब फिलॉसफी नहीं, आउटलुक, दुनिया की तरफ देखने की उनकी दृष्टि। यह दृष्टि उसमें से व्यक्त होती है। अब इसी में से उनकी समाज परिवर्तन की प्रक्रिया भी निष्पन्न हुई है। दूसरी विशेषता उस प्रक्रिया में ही दिखाई देती है। उन्होंने देश के सामने तीन प्रतीक रखे। क्रांति की हर प्रक्रिया में दो चीजें आवश्यक मानी जाती हैं। एक, कुछ प्रतीक हों जो कार्यक्रम को भी सूचित करें और क्रांति के उद्देश्य के भी सूचक हों। इस प्रकार के कुछ प्रतीक रखे जाते हैं। तीन प्रतीक उन्होंने रखे, सामुदायिक प्रार्थना, सामुदायिक कताई और सामुदायिक सफाई। सामुदायिक प्रार्थना ईसाइयों में थी, मुसलमानों में थी, हमारे यहां भी ब्राह्मण समाज में थी, प्रार्थना समाज में थी। सामुदायिक प्रार्थना गांधी से पहले थी इस देश में। फिर इस प्रार्थना में कौन सी ऐसी विशेषता थी? जितनी प्रार्थनाएं थीं, उनमें भजन गाए जाते थे भिन्न भिन्न धर्मों के भी, लेकिन किसी प्रार्थना में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं था। सामुदायिक प्रार्थना में भी सबके हृदय की आकांक्षा अपने लिए समान हो इतना काफी नहीं है। मेरी प्रार्थना आपके लिए हो, आपकी प्रार्थना मेरे लिए हो, असल में यह सामुदायिक प्रार्थना का आशय है। जिसके यहां चोरी हुई वो प्रार्थना करे कि भगवान चोर पकड़ा जाए तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, और चोर कहे कि पकड़ा न जाऊं तो मैं आप प्रसाद नैवेद्य चढ़ाऊंगा, मनोती दोनों की अलग अलग हो तो सामुदायिक प्रार्थना नहीं हो सकती। मस्जिद में प्रार्थना हो कि तुर्कस्तान की विजय हो, और गिरजाघरों में प्रार्थना हो कि इंग्लैंड की विजय हो, तो इन दोनों की प्रार्थना सामुदायिक नहीं हो सकती। सामुदायिक प्रार्थना का आशय समान होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना में, जैसा मैंने कहा आपसे कल उल्लेख किया उपराष्ट्रपति ने, कि प्रार्थना का नियम गांधी ने कभी भंग नहीं होने दिया। वो तो ठीक है, उनकी व्यक्तिगत साधना थी, लेकिन उसे सामाजिक मूल्य के रूप में परिणत किया। और सामाजिक मूल्य था कि इस देश में एक समष्टि का आशय, एक पारस्परिकता की भावना प्रार्थना में से भी विकसित हो। मैं मानता हूं कि यह गांधी की प्रार्थना का एक बहुत बड़ा संकेत है जिसको हमने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रार्थना हमारे साथ, हमारे सामने हमेशा एक रूटीन, एक विधि रही है। प्रार्थना हृदय से कभी निकली नहीं, इसलिए यह आशय हमारे राष्ट्रीय जीवन में व्यक्त नहीं हुआ। असल में राष्ट्रीयता क्या चीज है, इसको भी थोड़ा सोच लें, समझ लें। बहुत सी परिभाषाएं राष्ट्रीयता की हुई हैं और होती रहेंगी अंत तक, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब में एक परिभाषा बहुत ही सत्य के निकट है, और वो परिभाषा यह है कि जिस भौगोलिक मर्यादा में लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो वो राष्ट्र है। हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि एक दूसरे के पड़ोस में रहो लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। हम अगल बगल में रहे हैं एक दूसरे के, कितने हजार वर्षों से रहे हैं भगवान जाने, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। इसलिए हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना कभी विकसित नहीं हुई। एक ही भावना रही, भारतवर्ष एक है और भारतवर्ष पवित्र है। लेकिन यह भावना कभी नहीं रही कि इस भूमि पर जितने लोग रहते हैं उनको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इसके परिणाम आज आप देख रहे हैं, उन सब का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। भिन्न भाषी कौम में और भिन्न संप्रदाय के लोगों में अब एक दूसरे के साथ रहने की भावना कहीं है नहीं। हर एक अपने अपने विविक्त जीवन का पक्षपाती है। अलगौझा अलगाव की भावना इस देश में है और एक राष्ट्रीयता की जगह बहुराष्ट्रवाद आ रहा है और तेजी से आ रहा है। इस तरफ मैं आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि गांधी के हर कार्यक्रम में उनकी एक दृष्टि थी और वो दृष्टि अगर एक वाक्य में कहूं तो वो यह थी, मनुष्यों को मिलाने की, मनुष्य को मनुष्य के निकट लाने की। यह दृष्टि खास थी, यानी इसमें दो तीन चीजें साथ हो जाती हैं। एक तो परिस्थिति को बदलना, संदर्भ को बदलना, चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा संदर्भ को बदलने वालों को बदलना, जिसे उन्होंने हृदय परिवर्तन कहा। कि जो संदर्भ को बदलना चाहते हैं उनके अपने दिल बदले हों, वो मिलना चाहें एक दूसरे से, उनमें पारस्परिकता हो। ये पारस्परिकता शब्द मैं ले रहा हूं प्रिंस क्रॉपटकिन का, उसकी अभी अभी एक पुस्तक प्रसिद्ध हुई एथिक्स, और उसने कहा कि मनुष्य का पारस्परिकता स्वभाव है, उसका शिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, उसकी साधना भी करने की आवश्यकता नहीं है, यह मनुष्य का स्वभाव ही है। मनुष्य एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो मनुष्य के इस स्वभाव का विकास करने की परिस्थिति इस देश में विकसित करने के लिए गांधी ने सामुदायिक प्रार्थना कहा। केवल चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट नहीं, केवल संदर्भ परिवर्तन नहीं, उसके साथ साथ यानी एक ही प्रक्रिया में दो मनुष्यों को भी एक दूसरे के निकट लाना है। नहीं तो यह हो सकता है कि संदर्भ परिवर्तन की प्रक्रिया में ही मनुष्यों में पारस्परिक विरोध पैदा हो और अदावत विच्छेद पैदा हो। यह न हो इसलिए सारी प्रक्रिया इस तरह से बनाई, सामुदायिक कताई। हम उनके प्रयोजन को समझ नहीं सके और यह हमारा एक अभ्यास रहा है इस देश में, जिस जो अब स्वभाव बन गया है दीर्घकालीन अभ्यास के कारण, वो यह है कि जिस बात की हम पूजा करते हैं उसको सहसा जीवन में स्थान नहीं देते। अब ये लोकमान्य तिलक और गांधी और श्री अरविंद से पहले भगवद गीता इस देश में थी, लेकिन रेशम के कपड़े में बस्ते में रख दी जाती थी और पूजा की जाती थी। तो जिन सिद्धांतों की पूजा होती है उनको पवित्र जगह रखनी चाहिए, तो स्वर्ग में ही परलोक में ही उनको रखना चाहिए जहां तक हो सके, यह लोक में उनको भ्रष्ट नहीं होने देना चाहिए। धर्म का रथ भी तो भूमि से चार अंगुल ऊपर ही चलता था, कहीं भूमि पर न चलने लगे, इसका डर हमेशा रहा। गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल्स वेल विद द वर्ल्ड। तो ये दो सत्ताएं रही हमारे बीच में। गांधी ने इसी प्रक्रिया में दूसरा एक प्रतीक दिया, सामुदायिक कताई का। अब इसमें केवल इतना नहीं था कि जो अवकाश भोगी हैं, कभी श्रम नहीं करते, वो श्रम करने लगे, इतना तो था नहीं। इतना होता तो गांधी स्वयं कम से कम चांदी की तकली तो ले ही सकता था, और उसमें रेशम का धागा निकाल सकता था। लेकिन इसमें एक संकेत था कि श्रमजीवी और अवकाशजीवी दोनों एक दूसरे के निकट आए। हमने क्या किया, इधर विदेशी कपड़े की और मिल की दुकानें भी चलने दी, उनमें मुनाफा कमाया, और घर में आकर खादी पहनकर चरखा भी काट दिया। वो जैसे वो काली झंडी भी दिखा दी और मान पत्र भी दे दिया। और इसमें से माना कि वर्ग परिवर्तन होगा और वर्ग निराकरण होगा। यह हमने गांधी के सभी कार्यक्रमों के साथ किया है, कुछ एक ही कार्यक्रम के साथ किया हो ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिशा में जाने के लिए उसने कहा था, वो इसमें से चीज निष्पन्न नहीं हुई। आज भी मालिक और मजदूर का झगड़ा चल रहा है, और अब तो वो गांधी की संस्थाओं में भी आ गया है। यहां भी मालिक और नौकर का रिश्ता है ही, पैसा देने वाला पैसा पाने वाला, अपने को बेचने वाला और बेचने वाले को खरीदने वाला। इस रिश्ते का अंत करना गांधी चाहता था। आरंभ दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से इसलिए हो कि अब तक यह डीन मारता रहा है ऊपर का वर्ग, जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं, वो संस्कृति की डीन मारता रहा है, वो धार्मिकता की डीन मारता रहा है, वो आध्यात्मिकता की शेखी मारता रहा है। उसकी ओर यह चुनौती थी, यह आवाहन था कि तेरी संस्कृति और तेरी आध्यात्मिकता और तेरी धार्मिकता क्या मनुष्यों के संबंधों में प्रकट हो सकती है। तो हमने तो यही सीखा था, धर्म ने इतना ही सिखाया था कि अपने गुलामों को वैसे ही रखो जैसे अपने बच्चों को रखते हो, लेकिन गुलामी नष्ट मत करो। गरीबों को सुखी करो, उनको दान देते चले जाओ, लेकिन गरीबी नष्ट करने की बात मत सोचो। तो यह जो हमारी परंपरा थी, उसी परंपरा को लेकर हम गांधी का चरखा और गांधी की तकली काटने लगे। और कहा क्या कि मालिक और मजदूर दोनों के संबंधों को हम शुद्ध करना चाहते हैं, मालिक मालिक रहे और मजदूर मजदूर रहे। एक वाक्य गांधी का कोट करते थे, इन द राम राज्य ऑफ माई ड्रीम द स्टेटस ऑफ द प्रिंस एंड द पॉपर विल बी द सेम। और हमने क्या समझ लिया कि प्रिंस प्रिंस रहेगा, पॉपर पॉपर रहेगा, और फिर भी इनका रुतवा समान रहेगा। कम से कम इतनी बेवकूफी तो गांधी के नहीं मानना चाहिए था कि इतना नासमझ वो होगा, इतना मूर्ख आदमी होगा कि भंगी भंगी रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, और फिर इनका समन्वय होगा, क्लास कोलेबोरेशन, विशस इन प्रिंसिपल ऑब्नॉक्शस इन प्रैक्टिस। वर्ग समन्वय अपसिद्धांत है। गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, मालिक मालिक रहेगा, नौकर नौकर रहेगा, महाजन महाजन रहेगा, मजदूर मजदूर रहेगा, और इनका दर्जा समान होगा, इनकी प्रतिष्ठा समाज में समान होगी। ऐसी बात गांधी कह सकता था, मैं ऐसा आरोप में उस पर नहीं कर सकता क्योंकि उसको कुछ मानता हूं, थोड़ी श्रद्धा मेरी गांधी में है, इसलिए ऐसा आरोप नहीं कर सकता। वर्ग निराकरण की तरफ बढ़ने के लिए जो कदम उसने आवश्यक समझे, वर्ग निराकरण हो लेकिन मनुष्य एक दूसरे के नजदीक आए, बीच का व्यवधान रुकावट अंतराय हट जाए, तो दोनों एक दूसरे के निकट आए। दोनों को एक दूसरे के निकट लाना है, यह तो अंतिम उद्देश्य था, इसलिए यह चीज कही कि दोनों तरफ से आरंभ हो। जिनको क्रांति की आवश्यकता है वो गरीब डग भरेंगे, कदम कुछ बड़े डालेंगे रखेंगे, क्रांति की जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी धीरे धीरे ही क्यों ना हो लेकिन बढ़ेंगे उसी दिशा में, एक दूसरे की प्रतिकूल दिशा में नहीं जाएंगे, यह संकेत था। तीसरा संकेत, हमारे बुजुर्ग दिवाकर जी ने कल आपसे कहा स्पर्श भावना का, मित्रों इस देश में इसकी आवश्यकता क्यों थी?